ओम शांति संतोष बहन,
ओम शांति।
थैंक यू, आपने टाइम दिया। कभी डबल विदेशी बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ मधुबन से माल मिलता है तो आता है फीलिंग के घर से कुछ मिला है।
जरूर।
तो आज का जो विषय है वो है योग तपस्या के ऊपर। तो शुरू शुरू में साकार बाबा जब भी छोटे बच्चों को तपस्या करा रहा था मधुबन में, कराची में, तो वो डायरेक्शन देता था, बच्चे आप ऊपर छत पे जाकर के एकांत में बैठो, योग तपस्या करो अकेला अकेला। फिर बीच में बाबा ने 90s के शुरुआत में तपस्या का जैसे एक परिभाषा बदल ली,
रूप बदला।
हाँ, आप महादानी बनो, महादानी बनो। तो अभी का जो समय हम गुजर रहे हैं, जो सीन हमारे सामने है, तो अभी का समय अनुसार तपस्या का कौन सा रूप होना चाहिए?
अभी समय विश्व को शांति की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। ऐसे समय पर हमको महादानी वरदानी बन के बैठना पड़े, परंतु ये तभी संभव हो सकता है जबकि हमने पहले से ही तपस्या की इतनी परीक्षा ये प्रैक्टिस की होगी, और उसके लिए हमने अपने ऊपर अगर मेहनत की है तो हमारे अंदर वो शांति की शक्ति भरी हुई होती है। जब हम औरों को देने के लिए बैठते हैं तो पहले हमें तो अपना स्टॉक फुल करना होता है। तो अगर हमारे पास स्टॉक फुल है तो जब बैठते हैं तो हमारे को संकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे द्वारा आप शांति के शक्ति के वाइब्रेशन फैलते। तो इस समय जिस चीज की आवश्यकता है, अभी जैसा नजदीक में ही चारों तरफ हम देखते हैं जो वातावरण है बीमारी के कारण, कोरोना के कारण। अभी भी मेहसाणा वाली से फोन आया कि हमारे को कलेक्टर का फोन आया यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगह के मजदूर अलग अलग स्टेट में आके काम करते, और कहा हमारे पास इतने 500-600 मजदूर हैं जो अपने गांव में जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल नहीं हो सकते ना, उनको तो गांव की लगन लगी होती है, वो एकदम रास्ते के ऊपर आ जाते, जैसा बॉम्बे में बांद्रा में आ गए वैसा वहां भी बाहर निकल आए सब। और वो लोग चाहते हैं कि हमारे को घर भेजे, उनको गवर्नमेंट खाना देती है, सब कुछ देती है, परंतु वो खाना भी नहीं खा रहे। बोला 3-4 लोग उसमें से खाया और किसी ने खाना भी नहीं खाया। तो ऐसे समय अभी अभी आपकी मदद की हमको आवश्यकता है। आप इन लोगों का मनोबल बढ़ाइए, आप इनको ऐसी समझानी दीजिए, आप इनको ऐसे योग के वाइब्रेशन दीजिए जिससे जगह जगह पर ये ऐसा ही हो रहा है। आप ये हमारे को एक हेल्प करो तो इस महामारी से हम लोग निकल सके और इस सरकमटेंस को हम अच्छी तरह से मुंह दे सके। तो ये कार्य हम तभी कर सकते, बाबा पहले से ही कहते थे बच्चे लास्ट में तुम लोगों को औरों को देना है, क्योंकि जब तक तुम देगे नहीं तो उनमें ताकत नहीं है लेने की। जैसा कोई लंगड़ा होता है तो खुद नहीं चल सकता, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करेंगे तो ही चल सकेगी। तो उसी प्रकार वो योग नहीं लगा सकते हैं, वो ईश्वर को याद नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनको अपने मित्र संबंधी याद है, उनको अपना लौकिक घर याद है। तो ऐसे समय पर हमारी शांति की शक्ति जो है वो काम करती है, हमारे वाइब्रेशन काम करती है। तो उसके लिए हमारे को महादानी वरदानी बनकर के हम बैठे कि इन आत्माओं को शांति मिले, इन आत्माओं को शक्ति मिले, तो वो हेल्प उन लोगों तक पहुंचती है।
दीदी कभी कभी ये प्रश्न उठता है और इसमें भी एक दो का प्रश्न है कि जब भी आप किसी को योगदान देते हो ऐसे या शांति वकाय वाइब्रेशन फैलाते हो तो क्या उस व्यक्ति या सिचुएशन को इमर्ज करके फैलाते हो या ऐसे ही आप बाबा के पास बैठ करके योग करते हो?
बाबा के पास बैठ के योग करना होता है, योग तो बाबा से ही लगाना है और बाबा के सामने बैठ के योग करना है, परंतु ये संकल्प तो करना पड़ता है।
हाँ।
कि हमें उन व्यक्तियों को शांति या शक्ति का दान देना। जैसा आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, लोग दान करते हैं, दान करने के बाद जो गई हुई आत्माएं हैं शरीर छोड़ करके या और जो कमजोर आत्माएं हैं उनके प्रीत क्या करते, भक्ति मार्ग में दान पुण्य करके पूजा पाठ करके फिर लास्ट में क्या करते, वो हाथ में पानी लेते हैं और फिर ये सर्व को अर्पण कर देते हैं, क्योंकि साकार बाबा यही करता था। बाबा के अंदर लौकिक जीवन में भी ये बहुत बड़ा संस्कार था, उसने खुद के लिए नहीं किया, विश्व के लिए किया। वो प्रजा का पिता होने के कारण उसके अंदर जैसे वो संस्कार भरे थे कि ये सारी मेरी वंशावली। तो ब्रजेंद्र दादी सुनाती थी, जब भी हम लोगों को वो तीर्थ यात्रा के ऊपर ले जाता था सारी फैमिली को, तो वहां पर नदी में दान महादान माना जाता है भक्ति मार्ग में। तो नाव में बैठ के हम सभी नदी में जाते थे, बाबा बहुत पूजा पाठ इधर उधर सब कुछ कराता था और नदी में जाके ब्राह्मणों को दान देते थे, फिर लास्ट में बाबा हाथ में पानी की अंचली ले करके ये जो भी मैंने दान पुण्य किया है इसका जो पुण्य है ये सर्व आत्माओं को मिले, ऐसा करके वो अंचली देता। तो ये मतलब सर्व आत्माओं को इमर्ज तो करना पड़े ना, तो उसी प्रकार हम भी जो शांति का दान देते हैं, शक्ति का दान देते हैं, तो आत्माओं को इमर्ज तो करना पड़ेगा ना।
तो ये भावना संकल्प लेकर के हम करते हैं,
हाँ,
तो फिर वो सफल होता है। अभी एक दूसरा प्रश्न है कि एकांत क्या है?
एकांत का मतलब है एक के अंत में जाना। एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ कोई नहीं है वहां बैठा तो कोई एकांत होता है, कोई भी नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ, पर मेरे अंदर अगर तूफान चल रहा है तो उसको संकल्पों का विकल्पों का अगर तूफान चलता है तो उसको एकांत नहीं कहा जाता। एक अंत, एक के अंत में, बाबा के अंत में चले जाना, अर्थात एक के साथ लगन लगा के बैठना, एक बाबा दूसरा नहीं कोई, उसके बगैर हमको कोई भी संकल्प नहीं आवे, इसको कहा जाता है एकांत। मैं और मेरा बस, जैसा जानकी दादी को पक्का था ना, मैं कौन और मेरा कौन,
बिल्कुल नष्ट मोह बन
क्या उसकी स्थिति थी,
कमाल जोरदार स्थिति थी। तो जब भी हम एकांत में बैठते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, तो कौन से संकल्प या फीलिंग इमर्ज होने चाहिए उस समय,
जिस समय हम एकांत में बैठते हैं बाबा के साथ?
एक ये प्रश्न आया क्यों, क्योंकि कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं, क्लास के टाइम योग होता है, दूसरे टाइम योग, लेकिन खास एकांत का योग, उसमें क्या कोई यूनिक होता है, यूनिक थॉट्स फीलिंग्स होते हैं?
जब एकांत में हम लोग बैठते हैं तो उस समय धीरे धीरे एकाग्रता हमारे अंदर आती जाती, तो जैसी जैसी एकाग्रता बढ़ती है तो बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां हैं ना, गुणों की, शक्तियों की, उसकी हमारे को फीलिंग आती है, हमारे को मिलता है। तो एकांत में बैठने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, इसीलिए एकांत बहुत जरूरी। और खास तो अमृत वेले के समय हम लोग बैठते हैं, उस समय पर तो चारों तरफ वैसा भी एकांत ही होता है, बाहर की भी एकांतता होती है, तो उससे बहुत फायदा होता है।
दीदी, इस विषय में ये एक प्रश्न है कि जब हम अमृत वेले के समय उठते हैं तो जल्दी जैसे बाबा के साथ एक वार्तालाप शुरू हो जाता है, कभी कभी किसी को लगता है कि ये ज्यादा ठीक नहीं है, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि बीज रूप स्थिति में स्थित होना है तो वो क्या होता है अमृत वेले के समय?
अभी ऐसा है, बीज रूप स्थिति जो है वो एकदम निर्संकल्प स्थिति, तो एकदम उठ करके अगर तुम नींद में से उठ करके बैठेगे तो कभी कभी नींद आ जाएगी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा बीज रूप में जाएंगे एकदम। तो इसीलिए जानबूझ के बोला जाता है कि जब भी तुम सवेरे उठते हो, अमृत वेले उठते हो, तो बाबा के साथ रू रियान करो, बातें करो, तो उसमें क्या है, जागरूकता भी रहती है और प्राप्तियां भी होती है। तो अगर कोई बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकता है, वातावरण बड़ा पावरफुल होता है उस समय का, हम जा सकते हैं अपने घर में परम धाम में बुद्धि बल के द्वारा बाबा के पास, परंतु एकदम वो बीज रूप स्टेज जो है, बीज रूप माना सर्व प्राप्ति वाली स्टेज, जैसा बीज में सारा झाड़ भरा हुआ होता है, तो बीज रूप स्थिति माना जिसमें सर्व शक्तियां भरी हुई है, जिसमें सर्वगुण भरे हुए, तो अगर उसकी प्रैक्टिस है तो करने में हर्जा नहीं है, परंतु जरा मतलब डिफिकल्ट लगता है सबको ये बात।
हाँ, तो फिर कब प्रैक्टिस किया जाए?
उसकी प्रैक्टिस वैसे निमा शाम के समय अच्छी होती, क्योंकि उस समय भी देखो भक्ति मार्ग में बोलते हैं शाम का समय जब भी होता है ना, तो सब लोग घर में लाइट जला के रखते हैं निमा शाम के समय। क्यों लाइट जला के रखते? कहते इस समय देवताएं आते हैं, इसीलिए भारत में ये मान्यता है इस बात की। तो वो जो समय जैसा अमृत वेले का समय होता है ना, वैसा संध्या का समय भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इस समय भी तो संगम होता है दिन और रात का, तो इसीलिए वो समय भी ऐसा होता है, बड़ा पवित्र वातावरण होता है। इसीलिए लोग भक्ति मार्ग में आरतियां करते हैं, पूजा करते हैं शाम के समय पर बैठ करके, तो वो समय भी बड़ा अच्छा होता है, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और दीदी ये जो बाबा ने अभी ड्रिल अव्यक्त मुरली जो 3 अप्रैल की लगी, तो उसमें निराकार फरिश्ता के ड्रिल, तो उसमें भी प्रश्न आए हैं कि निराकार स्थिति का अनुभव क्या है और फरिश्तापन का अनुभव क्या है।
अभी हम लोगों की स्टेजेस है ना, मैं आत्मा निराकार हूँ और फिर मैं साकार में आती हूँ, शरीर में आती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, परंतु ब्राह्मण के बाद मुझे फरिश्ता जरूर बनना। ब्राह्मण सो देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये जो फरिश्तेपन की स्टेज है, फरिश्तेपन की स्टेज माना आकारी स्टेज, देह से अलग। आप जो निराकारी स्टेज है ना, वो कर्म करते हुए उसमें रहना जरा डिफिकल्ट है, परंतु आकारी स्टेज में कर्म करना बहुत इजी। पहले हम लोगों को बहुत कठिन लगता था, बाबा सामने बैठा हुआ था, बाबा कहता था तुम लोग वतन में चले, अरे वतन में कैसा जाएंगे, आपको तो हम सामने देख रहे, तो बहुत कठिन लगता था। परंतु जब ही से बाबा अव्यक्त हुआ, बाबा वतन में गया, तो नेचुरल है बाबा की तरफ बुद्धि लग जाती है, आकारी वतन में हो जाते हैं। देह के भान से परे मैं डबल लाइट हूँ, अभी सहज बुद्धि जाती है, पहले नहीं जाती थी। तो ये जो अव्यक्त स्थिति है ना, ये कर्म योगी की स्थिति, चलते फिरते हम कर्म करते हुए उस स्थिति में रह सकते हैं। परंतु जो निराकारी स्टेज है, निराकारी स्टेज खास बैठने के बाद उसका ज्यादा अभ्यास हम कर सकते। आत्मा हूँ ये तो पक्का हो गया, परंतु मैं जो आत्मा हूँ, मैं निज आत्मा, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का, और मेरे जो ओरिजिनल गुण है, उस एक एक गुण की जो अनुभूति है, एक एक शक्ति की जो अनुभूति है, वो बैठने के बाद होती। उसके लिए थोड़ा लंबा पीरियड हम लोग बैठते हैं ना, तो उससे बहुत फायदे होते हैं हम लोगों को। और ये अव्यक्त स्थिति में क्या होता है, कर्म करते हुए अगर हम उस अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, तो उससे हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं होते।
वेरी नाइस। ये दीदी, ये कभी कभी लोग कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करें ना, तो मैं अपने आप को एंजल विजुअलाइज करती हूँ, विंग्स है मेरे पास, लाइट का रूप विजुअलाइज करती, तो क्या ये ठीक है?
अभी जिनको जैसा इजी लगता है वैसा करते हैं, पर हमारे को तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो है ही एंजल ना बाबा के बच्चे, तो इसीलिए ये हमारे को वो पंख लगाने के, बाबा ने ज्ञान योग के पंख लगा दिए हैं, उड़ करके वतन में चले जाओ एक सेकंड में, जहाँ बाप बैठा है। देखो छोटी चिड़िया होती है ना, तो बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, बाबा जब ये अव्यक्त बनाना, तो हमको बहुत ठेस आई उस बात की कि बाबा हमको छोड़ के चला गया। परंतु फिर जब ये बाबा ने सारी समझा नहीं दी, तो समझ में आया जैसी चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, तो वो उसको चोच मार मार के उड़ना सिखाती, पर वो उड़ते नहीं है। फिर चिड़िया क्या करती, खुद उड़ करके झाड़ पर बैठ जाती, वो बच्चा फट 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 कर वो भी जाके बैठ। तो हम भी पहले नहीं जाते थे, परंतु जब ये बाबा बैठ गया, तो हम भी जाके उसके साथ बैठ जाए। और बाबा उस स्थिति को, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा जो रोज हमको पाठ पक्का कराता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, तो जितना जितना हमारा कम बोलना है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति ये वाणी से परे वाली स्थिति, आवाज नहीं है, अव्यक्त वतन में आवाज नहीं इशारे, तो इसीलिए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराए। तो अगर हम इसके ऊपर अपनी वाणी की तरफ ध्यान देते हैं ना, संकल्पों की तरफ तो रहे परंतु वाणी की तरफ ध्यान देते हैं और कम से कम आवाज में आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये मेरा खुद का भी अनुभव है, धीरे धीरे हम लोगों को फिर रख दो इधर, धीरे धीरे फिर हम लोगों को आवाज अच्छा नहीं लगता, ना आवाज करना अच्छा लगता है ना आवाज सुनना अच्छा, ऐसा समझते बैठे रहे शांति, या कर्म भी करते रहे, बर्तन का भी आवाज होता है ना तो अच्छा नहीं लगता।
दीदी आप इतने, आपके ऊपर जिम्मेवारी तो है यज्ञ की, जोन संभालते लोगों की है, लोगों कितने कनेक्शन में है, तो एक तरफ आप ये स्थिति बना रहे हो आवाज से परे जाना, दूसरे तरफ इतनी बाबा के बच्चे हैं और इतनी सेवा की फैलावट है, बातें भी बहुत है, तो आप इन दोनों का बैलेंस कैसे रखते हो?
देखो ऐसा है, जो भी जवाबदारी है वो किसने दिया है? बाबा ने दिया है। कार्य किसका है? बाबा का है। बच्चे किसके हैं? बाबा के। तो मेरे को उसमें फंसने की जरूरत, मैंने शुरू से लेके अपने को ऐसा रखा है कि जिस समय जो कार्य होगा उस समय वो कार्य किया और फिर फिनिश, उसके बाद हम कभी भी उस बात के लिए संकल्प नहीं चलाते, कम से कम संकल्प जितनी आवश्यकता होगी उतना ही करें, मेरी जवाबदारी नहीं, जवाबदारी उसकी है, मैं क्यों अपने सिर पर उठा के घूम, मैं कभी जवाबदारी नहीं समझती हूँ, हम तो उसके हैंड्स हैं, वो हमारे को जैसा चलाता है हम वैसा चलते, जब हम समझते ना ये मेरी जवाबदारी है तो घबराहट होती, परंतु हम कभी समझा ही नहीं देगा, क्योंकि हमने दादियों से देखा सीखा, हमने बाबा से सीखा, बाबा ने कभी भी नहीं कहा ये यज्ञ मेरा है, बाबा ने कभी भी नहीं कहा ये बच्चे मेरे हैं। बाबा देखो ब्रह्मा भोजन में हम साथ में बाबा के साकार बाबा के साथ बैठते थे, बाबा क्या बोलता था? बाबा कहता था बच्चे शिव बाबा को याद करके शिव भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो, है ब्रह्मा भोजन पर शिव भोलेनाथ के भंडारे से स्वीकार करो, समझा? मेरा भंडारा है ये उसने कभी नहीं समझा, जब उसने मेरा भंडारा नहीं समझा, मेरे बच्चे नहीं समझा, तो हम कैसा समझेंगे ये मेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जब ये देह भी मेरी नहीं तो मेरा क्या है?
तो ये सीक्रेट है अंदर की लाइटनेस, अंदर से लाइट रहना,
राइट, एकदम लाइट रहते हैं, मैं कभी भी भारी नहीं हूँ।
हाँ ये तो हमने देखा,
हम बहुत लाइट रहते।
अच्छा अभी एक दूसरी बात आती है इसमें, कर्म बंधनों की बात। बाबा ने काफी टाइम ये भी बताया है कि बच्चे ये यज्ञ है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त भी बनेगा कर्म बंधन चुप तो करने के लिए, और जब कर्म बंधन आते हैं तो फीलिंग भी ज्यादा बढ़ती है अंदर से, दिमाग इतना नहीं काम करता है उस समय, तो कर्म बंधन को चुप तो करने के लिए योग में कौन सी स्पेशल बात चाहिए? क्या उस व्यक्ति सिचुएशन को इमर्ज करना है, क्योंकि उस समय वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग आते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उस समय?
ऐसा है, उस व्यक्ति को इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, परंतु जितना जितना हम ईश्वरीय याद में रहते हैं, सिर्फ बाबा याद रहने से ये नई स्थिति बनती है, उसके साथ ड्रामा की भी स्मृति रहनी चाहिए कि ये वैरायटी ड्रामा है, इसमें हरेक का पार्ट अपना अपना है। जब ये समझ हमारे को बुद्धि में फिट बैठ जाए, फिट बैठना चाहिए, और हरेक कोई ड्रामा के सूत्र में बांधा हुआ है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है एक्यूरेट, उसमें मैं क्यों दखल अंदाजी कर रही हूं? इसके ऊपर मनोहर दादी बड़ा अच्छा उदाहरण बताती, मनोहर दादी बताती थी, देखो हमारे को एक बारी बोला यज्ञ में कराची में एक साथी मिला, बड़ी कर्मज्ञ थी, मैं जो बोलूं उससे उल्टा करेगी, जो बोलूं उससे उल्टा करेगी, और समझाओ तो बिल्कुल समझ, ऐसे तो मिलते हैं, हम लोगों को भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हो, तो मैं थक गई, बाबा के पास गई। मैंने कहा बाबा ये जो फलानी फलानी है ना, ये बिल्कुल सुनती नहीं है, जो बोलेगी उससे विरुद्ध करती है, आप इसको समझाओ। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, मैं समझाई। 15 दिन हो गए, फिर कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, कोई फर्क नहीं। फिर मैं गई बाबा के पास, बाबा आपने उसको समझाया? बाबा ने कहा हाँ बच्ची मैंने समझा। बोला वो तो वैसी है जैसी थी, आप बाबा फिर उसको समझाओ। बाबा ने कहा ठीक है मैं समझाऊ। फिर बाबा ने समझाया, फिर थोड़े दिन बीते, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर ये गई बाबा के पास मनोदा दी, बाबा वो तो जैसी थी वैसी है, आपने उसको समझाया? बाबा ने कहा बच्ची तेरे को दासी चाहिए या नहीं चाहिए? सत्युग में तेरे को दासी चाहिए ना? बोला मेरे को उस बहन के लिए इतना प्यार आया, मैं जाके उसको गले लगाया। मैं बोला ये समझा
कितनी दूरादेशी बुद्धि बाबा की।
बाबा ऐसा हल्का करता था बच्चों को, समझा? तो ये हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये इसको अगर आप बंधन समझेगी, बात को बड़ा करेगी तो आपको बड़ा लगे।
ये अच्छी बात आपने बताई कि ड्रामा का बहुत फिट होना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ जब ये कर्म बंधन आता है तो जब ड्रामा का ज्ञान पक्का नहीं होता तब दुख लेते हैं।
ड्रामा पक्का नहीं होगा तो दुख होगा ना। कर्म बंधन जो भी है हमने ही बांधे हुए है ना, फिर जब भी हमने बांधे तभी तो खुशी से बांधे। अभी चुक तो करने के बाद करने के समय रोना गया अभी भी खुशी से करो।
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक दूसरा प्रश्न है कि मैं जब योग में बैठती हूँ तो नींद बहुत आती है, जैसे मैं बैठू, बहुत सालों से योग में जैसे बैठू वैसे नींद आ जाती है, और फिर जब उठती हूँ तो ठीक होते, फिर काम काज करने में आप जितना भी काम दो मुझे मैं कर सकती हूँ, लेकिन नींद क्यों आती है ऐसे योग में?
नींद आनी तो नहीं चाहिए, कमाई का समय है ना। तो अगर ये ध्यान में रहता है कि मैं कमाई करने के लिए बैठी हूँ, और देखो मनमोहिनी दीदी थी अपनी, अमृत वेले योग में बैठने के पहले स्नान करके बैठती थी हमेशा। एक बारी तो स्नान, दूसरी बारी करती होगी, परंतु पहले स्नान करके पीछे फ्रेश होकर बैठती थी। तो हम लोगों को भी हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रेश होकर के पीछे बैठना, बोझा समझ के नहीं बैठो कि हम बैठे बस बैठ गए, वो मेरा बाबा है, मैं आत्मा हूँ, मैं भला ऐसा करने के लिए। उससे तो हमारे सर्व संबंध, जो आपको आप खुदा दोस्त के रूप में उसको याद करो। जब ही नींद आवे तो हल्के रूप से याद करो, आप पहले थोड़ी नहीं तो अव्यक्त मुरली वगैरह पढ़ लो तो उसका मनन करो, मनन करते करते आपकी बुद्धि लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बाकी हम एकदम बैठते कभी कभी 12 बजे भी बैठेंगे दिन में तो बीज रूप, और बीज रूप आएगा कहाँ से तुम्हारा?
वही ये भी दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी हम भट्टी के लिए सोचते हैं, चलो हम भट्टी में बैठते हैं, एम रखते हैं, अपने आप को जैसे नशा चढ़ाते हैं, और फिर जब योग में बैठते हैं तो कुछ होता नहीं है, तो हमारी गलती इसमें क्या है?
आर्टिफिशियल रीति से बैठते हो ना, नेचुरल बैठो, वो हमारा बाबा है ना, हमारे उसके साथ सर्व संबंध। आपको जो संबंध अच्छा लगे उस समय वो संबंध याद करो, उस संबंध से उसको याद करो, उसकी प्राप्तियों को याद करो कि वो मेरा बाप है तो मेरे को क्या प्राप्ति हुई, मेरा सखा है तो मेरे को क्या प्राप्ति हुई, अभी तक मेरे को जीवन में उससे क्या क्या फायदे हुए, बाबा के द्वारा मेरे को क्या क्या मिला। आप प्राप्तियां याद करेंगे ना आपको, आपकी नींद भाग जाए।
नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड विद्धि। तो ये भी है, किसी ने पूछा कि खुशी हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जब भी हमारी खुशी स्थायी नहीं रहती है तो इसमें हमारी योग में क्या कमी है कि जो हमारी खुशी ऐसी बनी बनाई नहीं रहती?
खुशी स्थायी नहीं रहने का कारण ये है, हमारा अपने ऊपर अटेंशन नहीं। अगर हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहता है दिनचर्या के ऊपर, तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होती है। हमारे से छोटी छोटी भूलें होती है, छोटी छोटी मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। तो जब छोटी छोटी मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, जैसा कहा जाता है ना पूरी पूरी तालाब, तो वैसे छोटे छोटे पाप बन करके इकट्ठे होकर ज्यादा हो जाता है, गठड़ी बन जाती है। तो वो जो गठड़ी है ना, वो गठड़ी हमको खुशी में नहीं रहने देती। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कोई हर्जा नहीं, पर मुझे किसी को दुख नहीं देना। कभी भी मुझे कुछ भी हो जावे, ये हमारे जीवन का सिद्धांत है खुद के, मेरे को कुछ भी हो जावे, भले धरत पड़ना पड़े, पर मुझे ईश्वरीय मर्यादा कभी भी उल्लंघन नहीं कर। जब ये हम अपने पास लक्ष्य रखते हैं कि ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, तो हम नहीं कर सकते। आप देखो जैसा रामायण में आप देखेगी, शास्त्र है ना रामायण, उसमें आप सीता का पाठ देखो क्या है। सीता राम के बिगड़ और किसी की नहीं बनी, सारा समय राम 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 के लिए बिचारी ने राजभाग छोड़ दी। उसके दिल में, उसके तन में, उसके मन में सदैव राम राम, पर सीता रोती रही, हंसती हुई नहीं देखी थी। है या नहीं? क्यों? क्योंकि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो वैसा ही मर्यादा, वो हमारा मिसाल है। अगर हम छोटी मोटी मर्यादाओं का भी उल्लंघन करते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती। ये बात
वेरी गुड, वेरी गुड। समझो मैंने कुछ गलत किया है, उल्लंघन किया है, तो फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करना, बाबा से माफी मांगना, खुद को स्पेशल तपस्या में बिठाना होता है।
अगर मैंने कुछ किया है गलती को रियलाइज करके उसको ठीक करना चाहिए। सिर्फ भूल जाने से फायदा नहीं है, फिर वापस वो गलती नहीं हो गई, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मम्मा हमेशा इसके ऊपर समझाती थी, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थी किसको कहते हैं, जो एक बारी गलती किया वापस जिंदगी में वो गलती रिपीट नहीं हो गई, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। और हम क्या समझते हैं, गलतियां करते रहो और अपने को पुरुषार्थी कहते रहो, ठीक है ना? हमारी डेफिनेशन ही अलग है।
वेरी गुड। गलती करो फिर अपने आप को ज्ञान से ठीक करो, ये पुरुषार्थ है। वेरी गुड। दीदी लास्ट में आपने दादी जानकी से पालना ली है, प्यार ली है, और आप बहुत नजदीक का संबंध है, दादी को आपके लिए बहुत प्यार था,
मेरे को जो था उसको
एक एक यूनिक प्यार था। और दादी भी हमको कहती थी, मेरे तीन वारिस थे, संतोष, सरला और चैती, तीन मींस आपके लिए कोई विशेष प्यार था। आप जब इतने सालों से दादी को देखते आए हो, कौन सी एक दो बातें आपने दादी से सीखा है और धारण किया है जो आपको बहुत टच हुई है दादी के?
दादी के जीवन ही टच हुई है सारी। दादी का त्याग, दादी की तपस्या, दादी की मेहनत और दादी की लगन। क्या लगन थी, मेरे को जो मिला है वो मैं सबको दूं। तो हमको भी हमेशा ये रहता है कि हमारे पास जो है हम औरों को देवी, और अनासक्त वृत्ति, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं हो। मैं हमारे पास वो ही सामान होता है जितनी कम से कम जरूरत, हम कभी ज्यादा नहीं कुछ रखते। सिंप्लिसिटी, वो हमको बहुत अच्छी लगती। मन की भी स्वच्छता, तन की भी स्वच्छता, स्थान की भी स्वच्छता दादी से सीखा है।
थैंक यू दीदी, वेरी मच अप्रिशिएट।